أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی عرفان بھائی وہی تو ہے کہ اعمال کیسے مجسم ہو جائیں گے, آپ سوچیں اس کو, یعنی اعمال, ہاں ہاں نہیں, اعمال کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے, ٹھیک ہے, وجدوا ما عملوا حاضرا یا محضرا, کہ جو اس نے عمل کیا ہے اس کو اپنے سامنے حاضر پائے گا, یا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرہ, کہ اگر ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی عمل خیر کیا ہے تو اس کو دیکھے گا, تو کیسے دیکھے گا, کہاں دیکھے گا, یعنی اب دو باتیں ہم سوچ سکتے ہیں, ایک بات یہ سوچ سکتے ہیں کہ عمل کوئی ایک سیپریٹ اینٹیٹی ہے اور کہیں سے نکل کر ایک شکل میں ہمارے سامنے آ جائے گی, یا کہ عمل کی حقیقت خود انسان کے نفس میں محفوظ ہو رہی ہے, اور جب نفس آخرت میں بیدار ہوگا تو وہ حقیقت خود یہاں سے نکل کر ہمارے سامنے آ جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے, یعنی اس بات کو اس طریقے سے سوچنے کی وجہ کیا ہے, کہ جیسے مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل میں ہے, اقرا کتابک, پڑھ اپنی کتاب کو, کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, کافی ہے ہر نفس آج کے دن خود اپنا حساب لینے کے لیے, یعنی کسی نفس کو ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ کوئی دوسرا آگے حساب کتاب کرے اس سے, اور کتابک, ہر انسان جو بھی بنا رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے, اس کی اپنی کتاب بن رہی ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ انسان کی زندگی میں کوئی چیز بھی سیپریٹ نہیں ہے, اس پر پوری فلسفی اور عرفانی بحث ہے, اور یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہے بلکہ اوروں کو بھی جو ہے نا, یعنی کہ مثال کے طور پر کہ اگر آپ دیکھیں آئی تھنک جو ہندو یا اس قسم کی سورسز ہیں, سب کے جتنے بھی عرفا ہیں سب کو یہ بات پتہ ہے, یعنی جس کو ملا صدرہ نے باقاعدہ پوری ترتیب ایک آرگنائز کیا, اس کو اتحاد عالم و معلوم, اتحاد عاقل و معقول, یعنی کیا مطلب ہوا اس کا, کہ اور جیسے اس جملے کو آیت اللہ جوادی عاملی نے بہت دفعہ اپنے درس میں کہا ہے کہ انسان کا عمل اس کی جان کے ساتھ ہے, انسان کا عمل اس کو رہا نہیں کرتا ہے. قرآن کریم کی آیت کیا کہہ رہی ہے, کل امرئ بما کسبت رہینہ, ہر شخص نے جو کمایا ہے اس میں گروی ہے, یعنی عمل انسان کی جان کے ساتھ ہے, اور عمل کس طریقے سے جان کے ساتھ ہے, اپنی حقیقت اور اپنے اثر کے اعتبار سے جان کے ساتھ ہے, یعنی عمل کی جو فزیکل فارم ہے وہ نہیں ہمارے ساتھ چلتی ہے, بلکہ ہر عمل کی ایک حقیقت ہے جب انسان اس کو انجام دیتا ہے, اور عمل کی حقیقت شروع ہوتی ہے نیت سے, ٹھیک ہے, عمل شروع ہوتا ہے نیت سے, عمل خالی اس ایکٹیویٹی کو نہیں کہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں اپنے ہاتھ پیر ہلا کے, تو وہاں سے عمل کی حقیقت شروع ہوتی ہے, اور وہ انسان کی جان کے ساتھ ہے, وہ کبھی بھی اس کو جدا نہیں ہوتی اس سے, یا جیسے ان ہمارے علماء کے الفاظ میں عمل انسان کو رہا نہیں کرتا ہے, یعنی گروی ہے انسان, گروی کیا ہوتا ہے کہ اس میں پھنسا ہوا ہے, اس میں موجود ہے,
عمل کے نتیجے میں جو ٹرانسفارمیشن ہو گئی, that's the effect of the
عمل, یعنی کہ جب انسان اپنے آپ کو دیکھے گا یا اس کے اپنے نفس کی حقیقت اس کی نظروں کے سامنے آ جائے گی, تو وہ اس کے تمام ایمان اور عمل اور اعمال کا پورا خلاصہ ہے, ایک نتیجہ ہے, ठीक है, यानी कि यानी जैसे इस दुनिया में भी एक होता है ना कि अगर मिसाल के तौर पर यानी दुनिया में मिसाल ले लें, दुनिया में भी वो सारी चीज़ें हैं लेकिन इतनी क्योंकि दबी हुई होती हैं और लोग उस पर गौर नहीं करते हैं, वरना बतौर आयत तो दुनिया में भी वही सारे मामले आते हैं। आप इस बात को देखें, सोचें कि एक शख्स है, अगर उसने कोई बुरे काम किए हैं, यानी डाकू है, चोर है, कोई बुरा इंसान है, उसको जब पकड़ के गिरफ्तार करके लाया जाता है, अदालत के कटहरे में खड़ा किया जाता है, जेल भेजा जाता है, तो उसकी पूरी जिंदगी सामने होती है कि नहीं होती? यानी उसका पूरा उसके किरदार और उसके अंजाम के साथ उसकी पूरी जिंदगी उसके यानी सामने होती है कि नहीं होती कि तुमने ये किया ये किया ये किया, कि वो तमाम आमाल के असरात जो हैं, अगर वाकई जेन्युइन पनिशमेंट उसको मिल रही है तो वो उस पनिशमेंट की शक्ल में अपने तमाम आमाल के नताइज को देख रहा होता है। या और ज़्यादा आसान सी मिसाल ले लें, मेरा ख्याल है जो हम में से हर एक ने एक्सपीरियंस की होगी, कि जब साल के एंड में रिपोर्ट कार्ड मिलती है तो रिपोर्ट कार्ड में एक एक चीज याद आ जाती है कि नहीं तालिबे इल्म को, कि अगर मैं उस वक्त अच्छा पढ़ लेता, उस वक्त मैं पढ़ाई छोड़ के खेल के पीछे नहीं जाता, फिल्म देखने नहीं जाता, फला एक्टिविटी में नहीं जाता तो मेरे नंबर इतने बढ़ जाते, ये सब होता है कि नहीं होता? यानी पूरे साल में जितना कुछ है वो सब का सब पूरी फिल्म आ जाती है आपके अंदर, तकरीबन यही समझ लें कि वहाँ का आलम कैसा है। वहाँ का आलम ऐसा है कि सिर्फ दिमाग की थॉट्स नहीं है बल्कि वो तमाम चीज़ें पूरी मुजस्सम होकर सामने आ रही हैं, विद फुल इम्पैक्ट सामने आ रही हैं। अच्छा, आज के लिए मैं कोई ख़ास बात सोच के नहीं आया हूँ, क्योंकि बेसिकली हो ही रहा था कि जो हमने पहले एक वो गुफ्तगू की थी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ के हवाले से, जिसमें हमने तीन बातें की थी आपके सामने रखी थी, सूरह तलाक की आयत से शुरू करते हुए कि यानी इंसान के लिए क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, आलिम होना, जो कुरान करीम ने बयान किया है कि तुम लिताअलमू अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्ल शैइन इल्मा या वलअल्लकुम ताक़िलून, हमने ये पूरा निज़ाम क्यों बनाया आसमानों और ज़मीन वाला, इन द एंड लअल्लकुम ताक़िलून, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिनों की खिलकत क्यों की, इसलिए कि वो अब्द हो जाएँ, इसलिए कि वो हकीकी इबादत गुजार हो जाएँ। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि थोड़ा सा, और इसीलिए रमज़ान के महीने में हमने इस सिलसिले को डिसकंटिन्यू भी किया था कि इन द एक्सपेक्टेशन के उस चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज़ करके, जो मैंने कहा था कि अपने आप को असेस करने की कोशिश करें कि ये जो हमारे सामने एक पूरा दर्जा है, एक लैडर है, इसमें हम किस मकाम पर पाए जाते हैं, हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएशन है, जो पर्पज़ ऑफ क्रिएशन है, कि जिसमें हमको ये बनना है, हमको यहाँ तक आना है, इन मराहिल तक आना है, तो हमने उनको कितना, उन राहों को तय किया है या उस सीढ़ी पर हम कहाँ हैं उसके, और इसीलिए हमने इल्म और अक्ल और इबादत तीनों के मायना को समझाने पे काफ़ी दिक्कत की थी कि ताकि इस बारे में कोई एम्बिग्यूटी ना रहे कि इल्म, अक्ल और इबादत या बंदगी का मतलब क्या होता है, क्योंकि वैसे तो हर एक ही सोच ले कि मैं आलिम हूँ और आकिल हूँ और इबादत गुजार हूँ, लेकिन इनके एक खसूसी मानवियत है इन तीनों टर्म्स में, कि हर मालूमात रखने वाला शख्स आलिम नहीं होता, जिसके पास रीजनिंग की कैपेबिलिटी अच्छी हो वो शख्स आकिल नहीं होता, और हर वो शख्स जो नमाज, रोज़ा और हज, ज़कात करे वो इबादत गुजार नहीं होता। कि हमें यानी इस बात को समझते हुए, इस बात को समझते हुए, हालांकि एक सख्त बात है, लेकिन हर नमाज पढ़ने वाला नमाजी नहीं है, नमाजी और चीज़ है, नमाज पढ़ना और बात है। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा सा अगर आप लोग उसको शेयर करें, अपने एक्सपीरियंसेस को रमज़ान के हवाले से और इसके हवाले से, तो वो बहुत बेहतर है, और दूसरा फिर ये कि इंशाल्लाह आगे चलने के हवाले से कि आई थिंक अगर आप लोगों का शौक़ तफसीर की तरफ ज़्यादा है तो हम एक बाकायदा एक पोर्शन लेके तफसीर का शुरू कर सकते हैं, और उसमें जो मुझे समझ में आ रहा था कि या तो हम सूरह फातिर से सूरह मोमिन तक आएँ या उन सूरतों की तफसीर को देखें जो हवामीम कहलाती हैं। हवामीम, हवामीम सबा, हवामीम का मतलब क्या है कि जो हामीम से शुरू होती हैं, सात सूरतें हैं, 40 to 46 सूरह मोमिन से शुरू होकर और सूरह अहकाफ तक ये जो सात सूरतें हैं ये सारी की सारी हामीम से शुरू होती हैं। तो इनमें बहुत मारिफ हैं। सूरह फातिर, अच्छा सूरह फातिर, सूरह यासीन, सूरह वस्साफात, सूरह सात, सूरह ज़ुमर बहुत बहुत गहरे मतलब हैं। तो ये हम एक डिसाइड कर लें और थोड़ा सा यही कि इस चीज़ को यानी ज़रा सा पहले आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, क्योंकि अब जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि अब इस मोनोलॉग को थोड़ा सा तब्दील होना चाहिए। हाँ हाँ बताएं कि क्या यानी रमज़ान के महीने में ख़ास तौर से कि जैसे जो हमने बात की कि उसमें इंसान की जो अपनी तरक्की है या कि उस डायरेक्शन में, यानी कि मैं तो इस चीज़ के लिए भी तैयार रहता हूँ कि तनकीद की जाए, मुझे वो बुरा नहीं लगता कि आप कहें कि नहीं ये बात यूँ हमें मुकम्मल नहीं लग रही है, हमें सही नहीं लग रही है, इसमें ये तब्दीली होना चाहिए नज़रिए में, ये ऐड होना चाहिए। इवन वो भी मेरे लिए कोई वो नहीं है, कोई नागवार बात नहीं है, हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। हाँ यानी कि उस पर हमने एक बात की थी ना, तो ये कि और मैंने ही कहा था कि उसका एक अपना हिसाब करें कि ये मेयार जो हमारे सामने है, जो कुरान करीम और अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारे सामने एक मेयार रख रहे हैं, और ये मेयार ये है पूरा एक मतलब ग्रेड्स हैं उसमें, दरजात हैं, और अल्टीमेट ये है, तो हम इस निज़ाम में कहाँ पाए जाते हैं, किधर खड़े हैं? क्योंकि असल तो वही है, यानी कि बेसिक प्रॉब्लम हमारे साथ जो है, जो हम बार बार कहते रहते हैं इस बात को कि हमारे साथ जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो ये है कि आप ये कर लें, ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें, और उसमें जो मेन एस्पेक्ट है कि क्योंकि जो दीन है वो कर लें की लिस्ट का नाम नहीं है, बल्कि दीन जो है वो हकीकतन जो बुजुर्गान के भी जुमले हैं वो क्या है, इंसान साजी है। दीन किस लिए आया है? इंसान बनाने के लिए आया है, ना कि इंसान कुछ भी हो उसको एक डू और डोंट की लिस्ट पकड़ा दी जाए, इस काम के लिए दीन नहीं आया। और इस चीज़ को बहुत वाज़े अल्फाज में बयान कर दिया गया है कि जब अम्बिया की बेसत का मकसद बयान किया गया तो क्या कहा गया, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اگر تزکیہ نہیں ہے، اگر علم کتاب و حکمت نہیں ہے، تو پھر انبیاء کی تعلیمات کا کوئی حاصل نہیں ہے، انبیاء کی بعثت کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یا سورہ حدید کے اندر ہے کہ ہم نے اللہ نے کتاب اور کتاب کو اور لوہے کا بھی ذکر ہے نا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، بھی ہے کتاب بھی ہے کہ جس کو میزان بنایا، لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ اگر آپ اجتماع میں آتے ہیں تو اجتماع میں کتاب کو بھیجنے کا اور لوہے کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ انسانی معاشرہ جو ہے وہ عملی انصاف پر قائم ہو جائے، یعنی وہی جو دولت کریمہ یا حکومت الہیہ جس کی بنیادی ہال مارک ہو جسٹس۔ تو بتائیں تھوڑا سا شیئر کریں کہ بسم اللہ، آپ میزبان آپ۔
بس اسی چیز پہ غور و فکر تھوڑا سا دوبارہ
यानी कि उसमें सबसे बड़ी बात वही है ना कि हम खुद अपने आप को किस जगह पर पा रहे हैं। यानी ये सवाल जो है ना वो कि अपने आप को हम किस जगह पर पा रहे हैं, एलिवेटेड हैं नहीं हैं, या हमारी वही एक मेन फिक्र है कि हम फलां काम कर लें या कुछ कर लें, क्या ख्याल है?
पर्सनल ऑडिट जैसे आपने बताया, तो पर्सनल ऑडिट करने के बाद ये फील तो होता है कि वी आर इन अ कंटीन्यूअस स्ट्रगल, यानी हम एक मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं और निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन पीछे से भी तो हम लोग एक दिन मिलकर यही बातें कर रहे थे कि इस दुनिया में रह के मटीरियल वर्ल्ड से निकलना और रूहानियत की तरफ जाना एक कंटिन्यूअस फाइट है अपने आप से। तो एक साथ बैठे तो उन्होंने कहा कि फिर हम इस फाइट यानी जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उस एनवायरनमेंट को हम क्यों सोचते हैं कि ये फाइट है। आई थिंक इट्स अ गुड पॉइंट कि हो सकता है कि ये उनका एक नज़रिया था लेकिन हो सकता है कि इंटेंशन के बेस पे जो भी एक्शन हम ले रहे हैं, जैसे आपने बताया कि कोई भी एक्शन हम करते हैं तो वही अमल बनता है हमारा। तो अगर किसी भी एक्शन का अमल जो है नियत सॉरी जो है वो खालिस कुर्बतन लिल्लाह है और हो सकता है कि वो गलत काम हो लेकिन हमारे हमारे अपने हिसाब से शायद वो गलत ना हो लेकिन हो सकता है वो रियलिस्टिकली गलत हो, मतलब इंटेंशन हमारा गलत ना हो तो भी हम कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये कि स्ट्रगल तो ये फील तो है डेफिनेटली कि स्ट्रगल तो है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइट है।
नहीं लेकिन फिर वही बात है कि स्ट्रगल जो है वो आमाल की मंजिल पर है या इल्म और अक्ल और इबादत बंदगी की मंजिल पर है, असल सवाल ये है।
आई थिंक दोनों पे है भाई।
यानी असल सवाल ये है कि जैसे जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो ऑब्जेक्टिव है, डेस्टिनेशन है, वो खुदा क्या बनाना चाह रहा है? इल्म और अकल और बंदगी के दर्जात पर हमें बुलंद करना चाह रहा है। लेकिन जो हमारी डोमिनेंट एक वो है तालीम कह लें, वो इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करते हुए, यानी मेरा ख्याल है मैं ये वर्ड गलत नहीं कह रहा हूँ, इग्नोर करते हुए, इसलिए कि आप सबको ये बात पता है कि इन तीन चीज़ों पर जोर जो है ना कोई भी नहीं देता है। हमारे बचपन की तालीमात में, मस्जिद में, किसी भी जगह, इन्हें शायद ही कोई आपसे कहता हो कि आप हकीकी मारिफत वाले बने या अक्ल की जो वो तारीफ है, जो हकीकी तारीफ है कि उस अक्ल व हिकमत की राह पे जाएं या अब्दियत की पूरी कोशिश करें, तो वो आमाल पर ही सारे का सारा जोर जाता है।
वो पॉजिटिव काम करने के बाद इंसान को कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव फोर्सेस बहुत ज्यादा खींचती हैं। यानी
हाँ, तो लेकिन उसके मुकाबले में आपका हथियार क्या है? आपको क्या फील होता है? आपका हथियार क्या है? यही है आपकी मारिफत है सबसे बड़ा हथियार। यानी आप अगर वाकयन मारिफत और इल्म डेवलप करते हैं और बंदगी की क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करते हैं तो यही वो चीज़ है जो आपको इस रास्ते पर मजबूत करती है। खाली आमाल से आप नहीं मजबूत हो सकते।
और रमजान के हवाले से जो हैदर भाई आप पूछ रहे थे, ये जो चीजें अभी हमने आपको बताई ये तो जनरल 11 मंथ्स में होती है। रमजान में ये हां जरूर फील होता है कि चाहे हमारा प्रोग्रेस स्लो हो लेकिन आई थिंक वहां पे हमें ये फील होता है कई बार के नेगेटिव फोर्सेस आपको रोक नहीं रही, चाहे आपका अमल छोटा ही हो, आपका इंटेंशन बहुत अच्छा हो, उसमें भी आपको हमने ये आपको भी फील किया कि ऐसा नहीं होता है कि कोई नेगेटिव फोर्स आके हमें रोक रही है किसी भी अमल को करने से। इनफैक्ट ये होता है कि नहीं, ओ आज ज्यादा करना चाहिए। और आम दिनों में ऐसा होता है कि इंसान जो है वो कई बार उसको नेगेटिव फोर्सेस रोक देती हैं या मतलब नेगेटिव
थॉट। ये जाहिर है ये एक ऑरा है, डेफिनेटली रमजान है। ऐसे ही आप हरम मासूम में जाएं वहां आपको ये फीलिंग आती है, उसके अंदर वहां की बरकत आपको ऐसी फील होती है कि
ये चीज हमने कई सालों से फील की है और हमने मजलिसों में भी सुना है कि शैतान को बंद कर देता है अल्लाह, लेकिन ये रियलिस्टिक में फील किया है लगता है कि हाँ मतलब क्लियर कट डिफरेंशिएशन बिटवीन द मन.
लेकिन ये जुमला जो है ना, ये काफी जरा वो है, अधूरा जुमला है, शैतान को बंद करने वाला. कि रसूल खुदा का कलमा पूरा ये नहीं है कि शैतान को अल्लाह बंद कर देता है, बल्कि ये है कि खुदा ने शैतान को कैद किया है, लेकिन तुम उसे ना खोल लेना, तुम उसे ना खोल लेना. यानी इसका मतलब है कि इंसान की अगर काम सही नहीं होंगे तो शैतान आएगा उसके पास. ये थोड़ी है कि शैतान जो है वो एब्सोल्युटली बंद है, ऐसा नहीं है.
अपनी नफ्स की वजह से. हां, आई थिंक हम लोगों ने ये क्लास में रमजान के आने से पहले भी डिस्कस किया था. तो देन दैट मींस देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क ऑन हाउ फिर अपनी नफ्स पे काम करना बहुत जरूरी है.
जी, आप में से कोई कुछ नहीं. ये नहीं कि मेरा असल सवाल यही है कि ये जो बात है कि इल्म, अकल और बंदगी के इस डायरेक्शन में, यानी एक तो ये बात हो सकती है ना कि आप कहें कि भाई हमें ये डायरेक्शन ही समझ में नहीं आ रही कि क्या है, हमें पता ही नहीं कि ये बात क्या है. पहला तो ये. लेकिन अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, वो मैंने इसीलिए कहा था कि उसको दोबारा देखिएगा, उसको रिवाइज़ कीजिएगा जो हमने गुफ्तगू की है. तो अगर ये बात समझ में आ रही है तो फिर हम एसेस कर सकते हैं कि हम किस जगह पर हैं, यानी इल्म और अकल और बंदगी के किस मेयार पर हम खड़े हैं. तो उस हवाले से मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा अगर जी नहीं, लेकिन उसमें देखें ना, अगर आप थोड़ा सा वापस जाएं जो बातें हमने की थी, कि ये दो बहुत एंटायरली डिफरेंट अप्रोचेज हैं. ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि ये दो बिल्कुल अलग राहें आपस में मैच नहीं करती हैं. इस बात को अच्छे तरीके से समझिएगा कि एक रास्ता जो ये है कि यानी आमाल का, या मिसाल के तौर पर फ़िक़्ही अहकामात का और उसका वो सारी चीज़ें, ये एक रास्ता है. नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये एक रास्ता है. ठीक है, इस रास्ते को जो अपना हदफ और टारगेट बना के चल रहा है वो एक मकाम तक जाएगा, तो ये वो जाएगा एक जगह तक. इसी तरीके से मिसाल के तौर पर जो कई और रास्ते हैं कि यानी फॉर एग्जांपल उसकी हम बात नहीं करते कि वो लोग जो खाली मतलब आज़ादारी उसको छोड़ देते हैं वो, लेकिन एक रास्ता और है कि मिसाल के तौर पर वो लोग जो अहले मारिफत हैं वो उनका एक रास्ता है, वो लोग जो अहले मुजाहिदा हैं यानी जो सियासी इस्लाम पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं, या वो एक रास्ता है फॉर एग्ज़ाम्पल. तो हर जगह पर, हर रास्ते पर चलने वाला शख्स जो है ना वो एक मकाम तक जाएगा, वो एक अलग राय, ये आपस में मिलती नहीं है. ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इल्म और अक्ल और बंदगी वाली राह है, ठीक है, पहले आपको ये समझ में आया कि राह क्या है, इसकी अप्रोच क्या है, इसीलिए हमने कई आयतें भी आपको जो पढ़ के सुनाई थी, उन आयतों से जो है ना इस रास्ते की अप्रोच भी जेनरेट होती है। वो अप्रोच समझ में आई आपको क्या है? यानी आप इसको अचीव कैसे करेंगे? पहला तो सवाल यही है ना कि एक आपको गोल तो समझ में आ रहा है कि ये है, लेकिन वो जो बीच में मैंने इसीलिए कहा था कि उसको आपको कई बार सुनना और गौर करना पड़ेगा इन बातों पे कि अचीव कैसे करेंगे, उसका रास्ता क्या है। वो ये वाला रास्ता ही नहीं है, ये वाला रास्ता ही नहीं है। अगरचे कि आप इन चीज़ों को उसमें रखते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि वो शख्स फ़िक़ी अहकामात पे अमल नहीं करेगा या उसकी ज़ाहिरी शरीयत की पाबंदी नहीं करेगा, ये सब नहीं है। लेकिन आपको याद है हमने इल्म के ही हवाले से जो दो तीन आयतों की बात की थी, एक सूरह अनकबूत की आयत पढ़ी थी मैंने, और सूरह अनकबूत में भी जब अल्लाह ने उसकी मिसाल दी है कि जो क्या करते हैं, गैर खुदा को वली बना लेते हैं, उनकी मिसाल क्या है, कमसलिल अनकबूत इत्तखज़त बैता व औहनल बुयूत बैतुल अनकबूत, के और घरों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर, और उसके बाद क्या था, लव कानू यालमून, काश के ये उसका इल्म रखते होते। अब ये इल्म की कौन सी शाख है? ये इल्म की कौन सी शाख है? या सूरह बकरा की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी थी, इत्तकुल्लाह युअल्लिमुकुमुल्लाह, इसको उलमा आप काफी कोट करते हैं शायद, ये कौन सी राह इल्म है? तो जब हमने बात की तो हमने कहा ये रास्ता नहीं है। रास्ता क्या है? आयात इलाहिया की मारिफत और कल्ब का तकवा, ये हकीकतन इंसान को उस इल्म के मर्तबे तक ले जाता है। वो जो इल्म है कि जो कुरान की नज़र में रिक्वायर्ड है, वो आलिम होना कि जो मकसद इंसानियत है, वो इल्म किताबों और दर्स व तदरीस से नहीं आता है। वो इल्म कहाँ से आता है? उसकी दो बुनियादी राहें हैं, और वो ये इससे बिल्कुल अलग है, ये एंटायरली डिफरेंट अप्रोच है लाइफ की। इन अ वे हासिल किया जा सकता है, लेकिन उस तरीके से नहीं हासिल किया जा सकता जो कन्वेंशनल वे है। यानी इसी पर मैंने जोर दिया था कि ये आपका आयात इलाहिया का इल्म, आयात इलाहिया का इल्म हासिल करने के लिए क्या चीज जरूरी है? बसीरत का रोशन होना, बसीरत, बसीरत यानि इंसान का जो विजन है वो ओपन हो और कल्ब में जज्ब करने की सलाहियत हो। देख पहली, नहीं नहीं बसीरत से मुराद अगर आप खाली देखने की सलाहियत को लेते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर बसीरत और बसारत यानी जो हकीकी बसीरत है, बसीरत का मतलब है कि एक शय की हकीकत को समझना, ठीक है, बसर देखने को भी कहते हैं, लेकिन एक शय की हकीकत को जो समझना है वो एक और चीज है। वो अल्टीमेटली, वो बात आपकी सही है, अल्टीमेटली बात सही है कि जब हम कह रहे हैं कि कल्ब में जज्ब करने की सलाहियत, तो जज्ब करने की सलाहियत कहां से आएगी? यानी बसीरत जो है वो अपर्चर है, ठीक है, जो सही लाइट को लेगी। अगर बसीरत दुरुस्त नहीं है तो उसका नुकसान क्या होगा? अगर बसीरत दुरुस्त नहीं है तो उसका नुकसान क्या होगा कि पॉल्यूटेड इंफॉर्मेशन सही के साथ साथ अंदर दाखिल होगी। बसीरत सही और गलत को अलग करके देखने की सलाहियत है, लेकिन जो इल्म हकीकी है वो तो قلب پر حق کے روشن ہونے کا نام ہے نا, تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایمان اور تقویٰ, لیکن جو اس کی اپروچ ہے وہ کیا ہے, اس کی اپروچ کیا ہے, آیات الہیہ میں غور و فکر.
لیکن حضرت بھائی یہ بھی چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہی تو ہوں گی, جو ہم بتا رہے تھے کہ ون بار, یعنی ہم چلیے یہ تھیوریٹیکل بات ہے سمجھ میں آ گئی, لیکن اگر اس کو پریکٹیکل سینس میں ایک ہم لوگ جیسے لوگ شروعات کرنے کی کوشش کریں تو اس کا کوئی سٹیپ تو ہوگا.
دیکھیں اس کا سٹیپ بہت سامنے کی بات ہے. ہر انسان اپنی نظروں کے سامنے بیمار پڑتے ہوئے دیکھتا ہے, آیت الہی ہے, آیت الہی ہے لوگوں کا بیمار پڑنا, اپنا خود بیمار پڑنا یا نہیں ہے, بہت سادہ سی بات ہے نا, کیا اثر ہوتا ہے اس کام پہ, کوئی اثر ہے؟ یعنی کہ جب بیمار پڑنے کے بعد کھانے پینے کا مزہ جاتا رہتا ہے, بیمار پڑنے کے بعد انسان کے ہاتھ پیروں کی حرکت ڈاؤن ہو جاتی ہے, یہ اللہ کی آیت ہے یا نہیں ہے, کیا اثر ہے اس کام پہ؟ ہم اپنے زندگی میں اتنے لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں نہیں, کتنوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں بھی اتارا ہے, ہو سکتا ہے کئیوں کے لیے تلقین بھی پڑ دی ہو قبر میں اتر گئے, کیا اثر؟ آیت الہی ہے موت, بزرگ آیت الہی ہے, کیا اثر ہے اس کا؟ سورہ یاسین کہہ رہا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, جسے ہم عمر میں زیادہ کرتے ہیں اس کو خلقت میں جھکا دیتے ہیں. افلا یعقلون, کیا پس یہ لوگ عاقل نہیں بنتے اس نشانی کو دیکھ کر, کیا اثر ہے ہم پر؟ یہ تو بہت سمپل ہے, یعنی خدا نے تو عالم ہونے کا رستہ وہ رکھا ہے کہ جس کے لیے کسی مکتب مدرسے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
اس طرح کی
خدا نے خود, لیکن اسی میں تو پورا کا پورا علم یہیں پر تو ہے, انہی جگہوں پر تو ہے سارا زندگی کا علم. یعنی اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, انسان جب اپنی زندگی میں, حسین بھائی یہ میں خیال ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے, کہ انسان جب اپنی زندگی میں آگے کی طرف جاتا ہے, اگر انسان با اختیار ہے یعنی خود اختیار رکھتا ہے, تو کبھی اپنے کو بیمار ہونے دے گا؟ کوئی بھی انسان اپنے اختیار سے اس بات کو پسند کرے گا کہ میں اپنی قوتوں کی پیک پر آنے کے بعد دوبارہ سے کمزور ہو جاؤں؟ کسی بھی انسان کی یہ چوائس ہوگی؟ بتائیں مجھے کہ جوانی کی قوت کے بعد بڑھاپے کی ضعیفی اور کمزوری دیکھوں, کوئی بھی انسان اس چیز کو چوز کر سکتا ہے؟ تو سب سے بڑی بات یہی ہے, اس دنیا کی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ ہی لوگوں کا یہی ہے کہ وہ اپنے کو بندہ نہیں سمجھتے. یعنی انسان اتنے گناہ کیوں کر رہے ہیں, اتنے غلط کام کیوں کر رہے ہیں؟ جیسے امام کاظم علیہ السلام کا جو وہ واقعہ ہے جو بہت مشہور ہے, بشر حافی, نام سنا ہے آپ نے اس شخص کا, کہ ایک شخص تھا جو امام کاظم علیہ السلام گزر رہے تھے بغداد سے, تو ان کے گھر سے وہ کوئی دولت مند آدمی تھا, گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھیں گھر سے, وہ محفل سجی ہوئی تھی, اندر سے کوئی کنیز آئی باہر کوڑا اوڑا پھینکنے یا کسی کام سے, تو امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا ہے کس کا گھر ہے, کون ہے, تو نام لیا اس کا کہ یہ فلاں بشر اس کا نام. آپ نے ایک عجیب سوال کیا, آزاد ہے یا غلام ہے؟ یعنی عربی میں عبد کا مطلب ہمیشہ غلام نہیں ہوتا, تو عربی میں کہ آزاد ہے یا عبد ہے, کیونکہ عبد جو ہے نا وہ غلام کے معنی میں بھی آتا ہے, عبد جو ہے بندے کے معنی میں بھی آتا ہے, تو آزاد ہے یا عبد ہے؟ تو وہ حیران رہ گئی کہ یہ کون سا سوال ہے, تو اس نے کہا کہ یقیناً آزاد ہے, تو آپ نے فرمایا کہ آزاد ہی لگتا ہے. اچھا جب وہ واپس گئی تو اس شخص نے پوچھا کہ تمہیں کیوں دیر ہوئی, کیا تم معمولی سے کوڑا اوڑا پھینکنے گئی تھی, اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ तो कहने लगी अजीब सी बात है कि कोई एक साहब मिले बाहर और उनसे ये मुकालमे हुए मेरे। तो वो जुमला सुन के ऐसा मुनकलिब हुआ है वो शख्स कि वो उठ के भागा है, क्या नंगे पैर भागा है। तो उसका नाम हाफी पड़ गया ना, बशरे हाफी। और उसने फिर इमाम अलैहिस्सलाम को जाके रोका, रास्ते में आप आगे चले गए थे और बहुत कदमों में गिर के माफी मांगी। और अब इन्हें उसमें कि आपने वही जुमला आजाद ही लगता है, तो जिंदगी का सबसे बड़ा मसला यही है, जिस दिन इंसान अपने आप को अब्दे खुदा देखना शुरू कर देगा ना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी।
तो ये बंदा जो गया इमाम के पास जाकर उसने माफी मांगी, उसका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या था?
जाहिर तब्दीली आई उसमें पूरी, उसने अपने उन तरीकों को छोड़ा, अपने उन राहों को छोड़ा, उस राह को शागिर्दी को अख्तियार किया। तो जो मैं आलिम होने की बात कर रहा हूं, तो खुदा ने हकीकी आलिम होने को बहुत आसान किया हुआ है। आयात इलाहिया का इल्म, और दूसरे इल्म की राह क्या है? तकवा। इत्तकुल्लाह युअल्लिमुकुमुल्लाह।
थोड़ा सा है ना, जिस जो अभी समझ रहे हो ये कि मतलब हम जैसे ही रियलाइज करें कि हाँ ये चीज गलत है, उसको सबमिशन अपना अल्लाह के सामने कर दें,
वो आप उसी वक्त कर पाएंगे जब आपके अंदर बंदगी की सिफत होगी ना, यानी जब आप अपने आप को बंदा समझेंगे।
बंदा समझने का मतलब ये कि कोई गुनाह नहीं करेंगे।
बंदा समझने का मतलब ये है कि आप एक सुप्रीम अथॉरिटी को अपने ऊपर हाकिम समझेंगे। बंदा समझने का मतलब ये होता है कि देखें, बंदगी की बेसिक क्वालिटी क्या है कि मैं इससे बच के नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, जैसे इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआओं में इस जुमले को बार बार बयान फरमाया है, और आपने भी रमज़ान में पढ़ा होगा कि जो तुझसे भागने वाला है वो फरार नहीं कर सकता, ला युम्किनुल फिरार मिन हुकूमतिक, भागने वाला फरार नहीं कर सकता। ठीक है, तो इंसान जब अपने आप को अब्द खुदा समझता है, बंदे खुदा समझता है, तो उसके पास ये जितनी भी मतलब तकब्बुर है और जितने भी चीजें जो उसको गुनाह पर उकसाती है ना, तो सबसे पहले यही चीज आके रुकावट बन के खड़ी हो जाती है कि मैं खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं तो नहीं भाग सकता उससे, एक दिन तो उसके सामने हाजिर होना है क्योंकि मैं अब्द हूं। तो इसीलिए आप देखेंगे जो जिन लोगों ने ये सारा शैतानी निज़ाम बनाया है, उन्होंने सबसे पहले किस चीज़ पे वार किया है? इसी चीज़ पे वार किया है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई क़यामत नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, तुम आज़ाद हो, वही इमाम अलैहिस्सलाम को आज़ाद हो, जो दिल चाहे करो।
ये सब चीजें ऐसा करने के लिए एक एक करके एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, यानी जो हम अपने सेल्फ के साथ एक्शन ले रहे, पहले गुनाह छोड़े फिर, और
नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपकी जात में तब्दीली है, और उस तब्दीली के नतीजे में गुनाह खुद ब खुद आपसे तर्क हो जाएंगे या कम हो जाएंगे।
हाँ हाँ, मतलब सही सही,
ये आपकी जात में तब्दीली है, ये इसको आप बाहर से थोड़ी इम्पोज कर सकते हैं। यानी आप अपनी पूरी जिंदगी अगर जबरदस्ती गुनाह छोड़ने की कोशिश करते रहें, कभी भी नहीं छूटेंगे, कभी भी नहीं छूटेंगे। हम क्यों नहीं छोड़ पाते? इसीलिए तो नहीं छोड़ पाते कि ये तीन चीजें नहीं है ना हमारे पास, इल्म और अकल और बंदगी नहीं है ना, इसीलिए तो नहीं तब आमाल में इस्लाह होती, इसीलिए तो सालेहियत नहीं पैदा होती, इसलिए गुनाह तर्क नहीं होते, इसीलिए तो नहीं होते। और उसका जो एक समझ लें क्रूड तरीका है, वो क्रूड तरीका है डंडा, यानी जहन्नम का डर जो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कि उससे इतना ज्यादा खौफ दिला दो, इतना ज्यादा खौफ दिला दो कि वो डर के मारे इंसान पर सोचे, यानी सोचे ही नहीं। लेकिन जो हकीकी तब्दीली है वो तो इस बुनियाद पर है। जी, वही मारिफत, और मारिफत जब आपकी स्ट्रांग होती जाती है तो मोहब्बत है, वो मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। यानी जितनी मारिफत बढ़ती जाएगी, वो मारिफत आपको कहाँ ले जाएगी? मोहब्बत तक ले जाएगी। क्योंकि जब आप खुदा का अपने साथ रवैया, सलूक, मुलाहिजा करेंगे तो आप डेफिनेटली उस हस्ती से मोहब्बत करेंगे जी। हाँ, वो यानी कि इंसान को खुद समझ में आने लगता है कि ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये हकीकतन इंसानी मेयार के शाया निशान नहीं है। यानी बिल्कुल, मैं आपको एक सादा सी बात बताऊं कि अगर आप मेरे पास बहुत एक मोहब्बत वाले जज्बात लेकर आते हैं और मैं आप मेरे घर के अंदर आके बैठना चाहते हैं, मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, और मैं आप मेरे घर के दरवाजे पर आएं और मैं तोहफों की तहाइफ की एक बड़ी सी ट्रे लूं या एक बैग में बहुत सारे डॉलर डाल के आपको दूं और कहूं खुदा हाफिज, अच्छा लगेगा आपको? तो हम कैसे इस बात पर राजी हो जाते हैं कि अगर वाकयन हम खुदा को चाहते हैं तो खुदा हमें ये बनी बनाई सजी सजाई जन्नत दे और क्या खुदा हाफिज, हम खुश होकर बैठ जाए जी। बहुत, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा हदफ ही यही था, तुमने खुदा को चाहा ही इसी काम के लिए था, इसी चीज के लिए था, तुमने खुदा को नहीं चाहा था। क्योंकि अगर तुम दुनिया में, जैसे वही मैंने मिसाल दी कि अगर आप किसी को चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी दौलत क्या है कि उसकी तवज्जो आपको मिले, वो आपको टाइम दे, वो आपसे मुलाकात करे, ना कि ये कि वो आपको तोहफे तहाइफ की एक पूरी चीज पकड़ा दे और आप कहें जी जी वाह वाह, मैं तो, मेरा तो मकसद हल हो गया। तो आप खुद ही सोचें ना इस बात को। नहीं, जितना जितना स्ट्रांग होता जाएगा उतना उतना इंसान की जात में से गैर सालेह असरात खत्म होते चले जाएंगे। जाहिर है, तौबा है, इस्तिग़फ़ार है, इनाबा, जो ये सब चीज़ें आई हैं, अफ़ वो दरगुजर है। नहीं, वही मैंने कहा था ना, ये तो पीक है ना, ये तो पीक है, इन्हें हकीकतन आलिम और आकिल और अब्द हो जाना, इन्हें जैसे आइम्मा अलैहिस्सलाम की तरह। लेकिन वो तो एक इंतहा है, हम उसमें किस दर्जे पर हैं, यानी उस सीढ़ी में हम कौन से स्टेप पे खड़े हैं। और उसके हवाले से जो बहुत बुनियादी बात थी वो ये थी कि जो अभी आज भी मैंने दोहराई कि उसकी अप्रोच बिल्कुल अलग है, वो ये रास्ता नहीं है कि आप कहें कि हाँ मैं अमल करता जाऊं, ये करता जाऊं, वो उस तरीके से आप नहीं पहुंचेंगे वहां तक, वो तरीका नहीं है, वो तरीका ही डिफरेंट है। तो ये, और उसकी जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट और वो है, वो ये जो मैंने दो बातें आपको बताई, आयात इलाहिया में गौर व फिक्र, इबरत, नसीहत, वहां से इल्म, और ईमान और तकवा के हवाले से अपने आप को अपग्रेड करना, वो चीज वहां से आएगी, यानी इनर सेल्फ में तब्दीली से आएगी, ना कि ये कि आप अपने जिस्म को किसी अमल में लगाए रखें। ठीक है, ये दो अलग बातें, जिस्म जरूर सप्लीमेंट करेगा, जिस्म जरूर उस रास्ते पे चलेगा, यानी उसमें बहुत एक सादा सी बात है, जैसे अबू ज़र, जनाब अबू ज़र का किस्सा जो मैंने उसमें लिखा भी था कि हजरत अबू ज़र किस तरीके से मुनकलिब हुए थे, आप बताएं। ये शुरू शुरू में जब इस्लाम आया है तो लोग किस राह से मुनकलिब हुए थे, किस तरीके से, कहां से तब्दीली आ रही थी उनमें? नमाज रोजे से तो नहीं आ रही थी, नमाज रोजा तो था ही नहीं, नमाज रोजा तो था ही नहीं, कैरेक्टर से, और कैरेक्टर को जज्ब करने की का मुकदमा क्या था? अपने अंदर की, अपने अंदर की सच्चाई। ठीक है, यानी अबू ज़र जो थे उनके साथ बुनियादी तौर से क्या चीज हुई थी कि कई दफा वो अपने कबीले वालों के साथ गए एक्सपेडिशंस पे, के जो गए उन्होंने जाके बुतों को खाना खिलाते थे और बुतों के सामने नजराने पेश करते थे, और अबू ज़र को वहां से बेचैनी होना शुरू हुई कि ये सब गलत हो रहा है। ठीक है, उन्होंने इस बात को वहां रियलाइज किया, देखा, और एक जो वाकया भी बयान किया जाता है कि वो काफी बेचैन से हो गए थे, रात को सब सो गए अपने हल्ला गुल्ला करके, अबू जर को नींद नहीं आ रही थी, तो उस रात में, उस रात के अंधेरे में उन्होंने देखा कि जिस बड़े बुत के सामने खाने वाने रखे हुए थे, कि अंधेरे से निकल के कुत्ता आता है, वो उस खाने को खा जाता है और उस बुत के ऊपर निजासत करके चला जाता है। तो वहां से उनका जो है ना, बहुत ज्यादा उनको एक मतलब जिसम में, उनके दिमाग में, कि ये टोटली गलत है जो हम लोग कर रहे हैं। अच्छा देखिए, एक बात और भी, शायद आप लोग जो इंडिया से, आप लोग शायद इसको ज्यादा समझते हो हमारे मुकाबले में, कि हम लोग समझते हैं कि ये जो है ना, ये हम कहते हैं अरे ये बुत परस्ती तो पागलों बेवकूफों का काम है और इसकी क्या। लेकिन आप लोगों को शायद ज्यादा पता हो कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके लिए ये चीज कितनी रियल है, यानी जो लोग इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं उनके लिए कितनी रियल है और कितनी मुकद्दस है ये सारे काम उनके लिए। ठीक है, इतने आसान नहीं होता छोड़ना, कि जो आपके पूरे आबा व अजदाद और सब लोग जो करते चले आ रहे हैं और जो ट्रेडिशंस माशरे में बिल्कुल घुसी हुई हैं, उसको छोड़ना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, लेकिन वहां से फिर अबू जर के दिमाग, और फिर उनको जैसे ही पता चला कि मक्के में एक शख्स ने पैगंबरी का दावा किया है, वो तो फिर वो वहां से उधर आए और वहां खुदा का करना ऐसा हुआ कि आउट ऑफ ऑल द पीपल उनकी मुलाकात इमाम अली अलैहिस्सलाम से हुई, और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनको रसूल खुदा तक गाइड किया। तो ये तमाम की तमाम चीजें क्या हैं, आप समझ रहे हैं बात, यानी हक तक पहुंचने का जो जर्नी है ना, वो एक बिल्कुल डिफरेंट जर्नी है।
लेकिन क्या इंसान को इस बात के, मतलब ये इंसान खुद से डिसाइड करता है कि हम इस बात को मान गए और फिर ऑटोमेटिक हो जाता है, या ये भी चीज तो अल्लाह की तरफ से ही होती होगी?
ऐसा ही है ना, यानी कि पहली
क्राइटेरिया
हो, यही तो क्राइटेरिया है कि जब तुम्हें सच समझ में आए, जब हक समझ में आए तो उसे कबूल करो। आलिम और आकिल की क्या निशानी है? आलिम और आकिल इंसान की पहली अलामत ही यही है। आलिम किसको कहते हैं? जो हक को प्योर फॉर्म में परसीव करने की सलाहियत रखता है। आकिल किसे कहते हैं? कि जो इल्म हासिल हो जाए उस राह पर चलने में उसे कोई दुश्वारी या परेशानी पेश नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए तो ये बात हो रही है आलिम और आकिल वाली, कि अगर इंसान के अंदर ये क्वालिटीज हैं तो ना जब हक सामने आएगा तो वो शुबे का शिकार नहीं होगा, उसको सही तरीके से पिक करेगा, यानी बाबसीरत इंसान होगा वो। और आकिल होने का क्या मतलब है? ऐसी सूरह अनकबूत के आगे की आयत के आखिर में अनकबूत का जिक्र है, उसके आगे ये वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून लव कानू यालमून। खुदा ने एक निशानी बयान की, फिर कहा लव कानू यालमून, काश के ये इल्म रखते, यानी जो आयतें हमने इनके गिर्द बिखेर दी हैं, काश के उसकी हकीकत को जानते। मकड़ी से थोड़ी खुदा को कुछ सिखाना है, मकड़ी की मसल के जरिए से खुदा को एक हकीकत तक पहुंचाना है। अरे मसल, तो वो क्वालिटी किसकी है कि जो एक मिसल या मिसाल को देखकर एक हकीकत तक आए? वो आलिम है। और आलिम होने के बाद जो आपके सामने हकीकत रोशन हुई है उस राह को तय करना, यह आकिल है। वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून, तो ये असल में चाहिए, यानी आप अमल कर ही नहीं पाएंगे अगर ये क्वालिटीज अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, ये सलाहियतें नहीं पैदा करेंगे, तो आप कर ही नहीं पाएंगे जो करना चाह रहे हैं, और ये हम सब के साथ हो रहा है।
तो बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, किस पैमाने पे कौन है? तो हमें लगता है ज्यादातर लोग जो है,
नहीं अभी तो बात सिर्फ अपनी हो रही है दूसरों का तो हम
ये पता है जो इल्म की बात बताई आपने, लेकिन अमल यानी जो आखिल है वो है कि जो इल्म आने के बाद उस पे अमल करे, वहां ज्यादातर लोग जो है वो अटके हुए हैं।
हकीकत के बारे में बसीरत में भी मेरा ख्याल है कि काफी प्रॉब्लम्स हैं,
लेकिन अगर हम
हकीकत को ट्रू फॉर्म में, ट्रू स्टेट में परसीव करने में भी प्रॉब्लम्स हैं काफी, मेरे ख्याल के मुताबिक।
इस चीज से एक बात हमें,
और उसमें और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो ज्यादातर अफराद है ना वो अपने बायसेस से बाहर नहीं आते हैं। यानी आलिम होने के लिए जो सबसे पहली बात शर्त है वो क्या, वही हजरत अबू ज़र की मिसाल लें कि आप प्योरली कमिटेड टू ट्रुथ हो, यानी इस बात पर अपने आप को कमिट करें कि जो सच है वही मानूंगा और कुछ नहीं मानूंगा, तभी आप आलिम हो सकते हैं वरना नहीं हो सकते। अरे मैं समझ में, यानी अगर मेरी नजर में मेरे अब्बा के कहे की भी अहमियत हो, रिश्तेदारों के कहे की भी अहमियत हो, फला फला की भी अहमियत हो, मैं कभी भी हक तक नहीं पहुंच पाऊंगा। और शुरू में हुआ यही है सारा, यानी कि जब जहां जहां जब जब भी दीन आया है जिनको भी फजाइल मिले, जैसे कुरान करीम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाले जादूगरों की मिसाल दी है, उनकी क्या क्वालिटी थी बताएं, उनका आप वाकया पढ़ें कितना हैरत अंगेज वाकया कुरान करीम, उनकी क्या क्वालिटी थी और किस तरीके से सबमिट हुए, यानी कि उनके जो बातें और उनकी गुफ्तगू है वो कमाल है। नहीं, अनकंडीशनल के साथ साथ फौरन ही उनका सख्त तरीन इम्तिहान हुआ कि फिरौन ने उनको कहा कि ये तुमने मेरी मर्जी के बगैर ये कैसे तुम ईमान ले आए, और ये तुम तो पहले से कोई साजिश करके यहाँ आए हो, क्योंकि जाहिर है उसे पूरी राय अम्मा उसके खिलाफ हो जाती, तो उसने फौरन चीजों को पलटा, पूरी सियासी चाल चली कि मैं तुमको दायना हाथ और बायां पैर और इन्हें उल्टी सिम से हाथ पैर काटूंगा और सूली पे चढ़ाऊंगा। ये कोई आसान बात है, सूली आप समझते हैं ना क्या होता है। तो उनका जवाब क्या था, आप उस जवाब को देखें कि क्या तू इन्हें फकवी मा अंतकाव, कि तू पहली बात तो ये है कि तुम्हारा जो दिल चाहे करो, वमा तकवी हाजहिल हयात दुनिया, और तुम सिर्फ हयात दुनिया से आगे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी कितनी बड़ी मारिफत है, यानी तुम जितनी भी दिल चाहे अजियत दे लो, लेकिन उस अजियत की लिमिट हयात दुनिया पे खत्म हो जाती है। और तुम्हारी नजर में हमारा जुर्म सिर्फ इतना है कि जब हक हमारे पास आ गया रोशन निशानियों के साथ, तो हमने उसको कबूल कर लिया। और फिर उनका आखिरी जुमला क्या था, जो मेरे ख्याल में ना कमाल है, यानी उसका कोई पैरेलल नहीं मिलता है कम अज कम गैर मासूम शख्सियात में, जो ये जुमला है, वल्लाहु खैरुम व अबका, वल्लाहु खैरुम व अबका, अल्लाह बेहतर है और सबसे ज्यादा, अल्लाह अल्लाह, ये बहुत बहुत बड़ा कमाल है कि इतनी सी देर में इंसान यहां से यहां तक आ जाता है। यानी हम जो कह रहे हैं ना स्टेप्स, मैं शायद आपकी उस बात का जवाब दे रहा हूँ, कौन से स्टेप्स है वहां पे,
ये बात सही है, क्योंकि क्या था, अभी होर के साथ भी वही हुआ था।
कौन से स्टेप्स, नहीं होर का तो वक्त फिर काफी था, होर को तो फिर काफी ज्यादा वक्त मिला था, ये तो कुछ भी नहीं था, तो कोई टाइम ही नहीं था। कौन से स्टेप्स, स्टेप्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए होते, सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, आप अंदर से तस्लीम हो गए या नहीं हो गए, सिर्फ एक चीज चाहिए होती है। वल्लाहु खैरुम व अबका, अल्लाह ही खैर है और सबसे ज्यादा बाकी रहने वाला है। यानी तुम इस फानी हयात दुनिया तक मुझे तकलीफ दे सकते हो, अजियत दे सकते हो, बस दे दो। तो ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ, तो कैसे पता चलेगा।
लेकिन ये बात जैसे भी आपने कही कि अपने बाप दादाओं पे ना मानता हो, जब उस पर इल्म आ जाए तो उसको माने, तो जैसे हम लोग हैं, मान लिया हम आपके लेक्चर सुन के ये बात सुन रहे हैं, तो हमने खुद तो पता नहीं किया जाएगा।
देखिए मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आप मुझ तक ना रुकें, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मेरे दीन को मानेंगे, दीन खुदा को नहीं मानेंगे।
नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एक सेकंड के अंदर जो कन्वर्जन आया, उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी,
इसलिए इसलिए कि वो जो निशानी उन्होंने देखी थी, जो
जजमेंट बनाया था भाई,
देखें इस बात को बगौर समझने की कोशिश करें, हक हकीकतन कहां पर है? हक हकीकतन कहां पर है?
हर जगह पे है कि हमने अपने पर पर्दा डाला
है। हक हर इंसान की जात में पिना है, उसकी फितरत में। नबी और इमाम क्या काम करते हैं, या कोई भी वली और हादी क्या काम करता है? हम उनकी एफर्ट ये होती है कि हम खुद अपने को नहीं जानते हैं, हमें उस रास्ते पर, मतलब रियाजत से, मुख्तलिफ तरीकों से, एक्सरसाइज, स्पिरिचुअल, फिजिकल, उस तरीके से कहां तक हमें पहुंचा दें कि हम खुद अपने को जानना शुरू हो जाएं। ठीक, हम खुद अपने को जानना शुरू हो जाएं। तो जो भी हक है वो हमसे एक लम्हे के लिए भी दूर नहीं है। लेकिन अगर कोई भी इंसान सच के रास्ते में इतनी इस्तकामत दिखाता है तो खुदा की तरफ से जितने पर्दे हैं सब हट जाते हैं, एकदम हट जाते हैं। यानी जितने पर्दे पड़े हुए थे ना कि जो नजर नहीं आ रहा था, उन्होंने जो इस्तकामत, जिस इस्तकामत का मुजाहरा किया, जैसा मैं फिर वही आपसे कह रहा हूं कि यह आसान बात नहीं है। यानी एक तो कह देना कि हाँ सजदे में गिर गया, आमन्ना बे रब्बिल आलमीन, रब्बे मूसा व हारून, एक बात हुई आमन्ना। लेकिन उसके बाद वाला मरला बहुत खतरनाक है, समझ रहे हैं? उसके बाद वाला मरहला, उस जगह पर जब उन्होंने इस्तकामत दिखाई तो क्या नतीजा सामने है कि जितने भी पर्दे थे वो हट गए। अब वो किसको, यानी कि ये इंसान का कमाल है कि इंसान अल्लाह की नेमतों को नहीं, अल्लाह को अपना सरमाया करार दे। तो उस जगह पे आ गए, उस जगह तक पहुंच गए। यानी हम कौन सी, किस चीज को सरमाए के तौर पे जमा कर रहे हैं? नेमत है, खुदाबंदी को। जन्नत अल्लाह की नेमत है ना। अगर जिसको भी जन्नत मिलेगी, जन्नत तक पहुंचेगा, वो नेमत है, खुदाबंदी है ना। लेकिन उन्होंने किसको अपना सरमाया करार दिया? अल्लाह की नेमतों को नहीं, खुदा को। इसलिए मैंने कहा कि ये कमाल है ये जुमला, और गैर मासूम में इसका पैरेलल नहीं मिलता कि कहें कि अल्लाह खैर है और सबसे ज्यादा बाकी रहने वाला है। हाँ वो भी दी मुखलिसीन के दर्जे तक पहुंच गए, वापस आ गए, फिर वही उस शिर्क की तरफ आ गए।
वो उसकी जो ट्रिगर था वो फियर था, फियर ऑफ डेथ।
हाँ, यानी कि उसका जो मेन ट्रिगर था वो ये था कि मैं हाजतमंद हूँ और इस वक्त मेरी हाजत को दूर करने के लिए कोई सबब और वसीला मेरे सामने नहीं है। तो जब तमाम असबाब और वसाइल मुनक़ता हो गए तो फितरत में जिस हस्ती पर तकिया था वो चीज़ उभर के सामने आ गई। जी दोनों है। यानी पहले मरहले पर प्रॉब्लम इस जगह पर आती है कि हम सही को गलत से अलग करके ही नहीं देख पाते।
मतलब हम लोग लेजी हैं कि हम लोग देने की कोशिश नहीं करते कि अल्लाह नहीं भेजता, जैसे कि बहुत से आयतें हैं, हम लोग लेजी हैं, हम लोग सोचते हैं।
चलें थोड़ा सा मैं आपके सामने एक चीज पढ़ता हूँ, एक आयतें और थोड़े से हम क्वेश्चन आंसर्स की शक्ल में ही एक नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं। सूरह शूरा की आयतें हैं, सूरह शूरा की आयतें 24। अम यकूलून अफ्तरा अलल्लाह कज़बन, فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اچھا, اور یہ بالکل آیت اس کے نیکسٹ, بلکہ پیچھے والی بھی دیکھ لیں, وہ آیہ مودت ہے کہ شورا 42, شورا 42 ورس نمبر 23, ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات, کہ وہ نعمتیں یعنی جنت کی نعمتیں وہ ہیں کہ جنہیں اللہ بشارت دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ, اور کہہ دو کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا اس پر کسی اجر کا مگر قربا میں مودت. ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا, جو حسنا کمائے ہم اس کے لیے اس میں حسن بڑھاتے چلے جاتے ہیں. ان اللہ غفور شکور. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فان یشاء اللہ یختم علی قلبک. یعنی یہاں پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں مین, کہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ پر کوئی چیز فیبریکیٹ کر کے لے آئے, یعنی کون پیغمبر. فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ, اگر اللہ چاہے تو تیرے قلب پر مہر لگا دے, یعنی کوئی وحی تمہارے پاس نہ آئے, کچھ نہ ہو, کہ یہ بالکل فضول بات ہے کہ پیغمبر نے خدا کی طرف سے کچھ نہیں گڑھا ہے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, جہاں سے میں امفسائز کرنا چاہ رہا ہوں, وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ, اللہ باطل کو محو کرتا رہتا ہے. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, اور حق کو محق کرتا ہے, یعنی حق کو ثابت کرتا رہتا ہے اپنے کلمات کے ذریعے سے. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اور بے شک وہ بہت زیادہ عالم ہے. کس کا عالم ہے؟ ذات صدر کا. ذات صدر کا کیا مطلب ہوا؟ صدر کسے کہتے ہیں؟ فاد جی نہیں, ہارٹ نہیں, سینہ. ذات صدر یعنی سینے کی حالت, اس کی اصل حالت کیا, اصل حقیقت کیا, اصل کیفیت کی. بے شک وہ بہت زیادہ علم رکھتا ہے, عالم ہے. کس کا؟ علیم یعنی بہت زیادہ عالم ہے. ذات صدور کا. آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کنیکشن کیا بنا؟ اللہ باطل کو محو کرتا ہے, حق کو اپنے کلمات کے ذریعے سے ثابت کرتا ہے, اور بے شک وہ ذات صدور کا یعنی سینوں کی حالت کا بہت زیادہ عالم ہے. کیا بات ہوئی ہے؟ اور یہ پیچھے سے بات چل رہی ہے, شریعت اور ان سب امور کی بات چل رہی ہے کہ ہم نے شریعت بھیجی, لوگوں نے اس میں اپنے چیزوں کو گھسایا, شریعت کے علم کو لے کر ہی اس میں فتنے فساد برپا کیے. یہ سب باتیں پیچھے سے چل رہی ہیں, اور اس سے کنیکٹڈ ایک آیت سورہ حج کی بھی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ اس نے لوگوں تک ایک حقیقت کو پہنچانا چاہا لیکن اس میں شیطان نے اپنی چاہت کو گھسیڑ دیا, انکلوڈ کر دیا. تو یعنی جو بات بھی نبی کی انسانوں تک پہنچتی ہے اس میں شیطانت کے بھی چیزیں گھسی ہوئی ہوتی ہیں, تو یعنی اس کو الگ الگ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اتنی وہی یہاں پر وہی بصیرت بات آئی, حق کو باطل سے. لیکن خدا کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہم کرتے ہیں, جو باطل ہے, جو باطل شیطنت نے گھسا دیا ہے, ہم اس کو محو کر دیتے ہیں, یعنی ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں, ایویپوریٹ کر دیتے ہیں, اور اپنے کلمات سے حق کو ثابت کر دیتے ہیں, اسٹیبلش کر دیتے ہیں. ٹھیک, ویل اینڈ گڈ. اس کے بعد یہ کیا بات بھائی آئی, انہو علیم بذات الصدور.
مطلب یہی تو مین چیز ہے
inside of the heart, state of the seema jo bhi hai. तो अल्लाह उसी हिसाब से आपको,
आप बात समझ रहे हैं ना, ये ना इसका क्या मतलब है कि ये जितने भी कंफ्यूजन्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इसको कौन ठीक कर देगा? यानी इसमें जो हमारे सामने चीज आ रही है उसमें शैतान की उमनियत, शैतान की तमन्नाएं शामिल हैं बतौर बातिल। इसीलिए नॉर्मली आप लेते हैं हर जगह आपको कंफ्यूजन नजर आता है कि ये है वो है, इसको खुदा सही कर देगा अपने कलमात के जरिए से, लेकिन उसके लिए शर्त यह है ज़ाते सदर की तहारत। क्योंकि खुदा किसके लिए करता है, किसके लिए नहीं करता, बेस्ड ऑन व्हाट? यानी कुछ को बातिल में छोड़ देता है और कुछ इंसानों के लिए बातिल को महव कर देता है, हक को साबित कर देता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट? अमाल नहीं, ज़ात सदर। अब ज़ात सदर क्या चीज है? सीने की हालत का क्या मतलब हुआ? ये बड़ी खूबसूरत एनालॉजी है, बहुत खूबसूरत एनालॉजी है।
हकीकत की इल्म, हकीकत की जैसे ही नॉलेज हो उसको कबूल कर लेना।
ज़ात सदर, ज़ात सदर, इसको थोड़ा ये गौर करें, बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी है। यानी भाई उसकी हालत, कैफियत, उसकी हकीकत,
ये सीने से मुराद कल्ब ले रहे
हैं? नहीं, सीने से मुराद सीना है।
सिंसियरिटी टू फाइंड।
देखिए मैं आपको एक मिसाल से बात समझाता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा बड़े स्केल पे आ जाए। इन्हें पहले इस चीज को देखें कि सोचें कि असल क्या है, कल्ब है, ठीक है, कल्ब पर बात आ रही है जो बार बार है, कल्ब है, लेकिन कल्ब है दिल, और ये दिल जो है वो सीने की फजा में मौजूद है। कल्ब सीने की फजा में मौजूद है। इस मिसाल को यूं देखें कि जैसे जमीन है, जमीन लिपटी हुई है कि एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर में, आप अगर जमीन में कोई भी बीज बोना चाहते हैं और उससे कोई फसल उगाना चाहते हैं, पहले फजा की तहारत जरूरी है या नहीं है? मतलब उसकी भी अपनी, जमीन की भी तहारत है, जमीन की भी अपनी सेहत है, लेकिन जिस फजा में ये जमीन है, यानी अगर उसमें टॉक्सिक फ्यूम्स हैं, अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं है, अगर उसकी एयर पॉल्यूटेड है, तो उस जमीन पर जो पानी भी आसमान से बरसेगा वो क्या होगा? वो जहरीला हो जाएगा, वो जमीन को खराब कर देगा। अगर उसमें आपने कोई पौधा उगाया भी तो क्या होगा? सेहतमंद नहीं होगा, बीमार हो जाएगा, ठीक है। तो खुदा क्या कह रहा है? कल्ब की बारी तो बाद में आएगी, कल्ब की बीमारियों के बारे में पहले हम किस चीज को देखते हैं? ज़ात सदर क्या है, कल्ब को जो फजा घेरे हुए है वो कैसी है। अब आप मुझे बताइए कि उस फजा में क्या पाया जाता है, उस फजा में क्या चीज होगी, उस फजा में क्या है? सदर, सदर क्या चीज है? ज़ात सदर क्या है?
ज़ात मतलब जो पोजेस करता है, ज़ात दवा, ज़ात
दवा, जी ठीक है,
ज़ात जो है वो जो सदर पोजेस करता
है, जी, तो वो क्या है? वो कल्ब तो नहीं है, वो कल्ब तो नहीं है, इंसान के रुझानात, जो कल्ब,
जो
नहीं, जो कस्ब किया है वो कल्ब में जाता है, जो कस्ब किया है, जो आप कर रहे हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो कल्ब में जा रहे हैं। ज़ात सदर जो है, जिस फजा ने उसको घेरा हुआ है, वो इंसान के रुझानात, इंक्लिनेशंस, एस्पिरेशंस हैं।
इसका नाम कोई और आए थे?
हम्म,
इस मतलब इसको वाज़े करने के लिए कोई और आए थे?
ذات صدر آپ جہاں بھی دیکھیں صدر کے حوالے سے تو آپ کو صدر کا معاملہ الگ لگے گا, قلب کا معاملہ الگ ہے. یعنی رجحانات سے کیا مطلب, اب ذات صدر اور اس کے رجحانات سے کیا مطلب کہ, یعنی ایک آپ کو مثال دوں کہ دیکھیں بات اب وہی والی اب اس کی طرف آ رہی ہے کہ ایک رجحان کیا ہے کہ جو سچ ہوگا اسے مانوں گا, یہ رجحان ہے, یہ انسان کا ایک رجحان سمجھتے ہیں نا, رجحان یعنی آپ اپنی ذات میں جس چیز کو ترجیح دیتے ہیں بائی ڈیفالٹ وہ آپ کا رجحان ہے, یہ کوالٹی ہے, یہ ہر انسان کی کوالٹی ہے. دیکھیں بات جو ہے نا پھر تھوڑا سا اگر ہم اس والے لاجک پر آ جائیں گے نا جیسے جو آپ کہہ رہے ہیں, تو وہ لاجک ہمیں جس جگہ پہ لے جاتی ہے کہ انسان ایک کورا کاغذ ہے اور اس پر آپ کچھ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, حقیقت اس کی بالکل الٹ ہے. انسان کورا کاغذ نہیں ہے, انسان اس مخلوق کو کہتے ہیں جو فطرتاً اپنے الہ کا شعور رکھتا ہے, اور یہ تمام کوالٹیز انسان کے اندر بائی ڈیفالٹ موجود ہیں, جسے ہم نے کسی اپنی غلطیوں کی وجہ سے خراب کر دیا ہے ان اس کو ابھار کے لانا ہے. ٹھیک ہے,
تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے کہ اگر مان لیے یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے تو اس کے لیے کوئی تو سٹیپ ہوگا, یعنی کوئی بھی شروعات, یعنی اب سے مان لیے سب لوگ گناہگار ہیں اور مثلاً ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں اب ہم جو ہے گناہ نہیں کریں گے,
میں وہ شروعات ہی تو آپ کو, ارے میں وہ شروعات ہی تو آپ کو بتائی ہے, شروعات ہی تو آپ کو بتائی ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ کون کرتا ہے, یہ خدا کرتا ہے, یہ آپ نہیں کرتے, یہ میں نہیں کرتا, یعنی یہ ڈپینڈ کرتا ہے ذات ہمیں کس چیز کو صحیح کرنا ہے. نمبر ون, جو لوگ شروع میں پیغمبر کے ساتھ آ رہے تھے وہ نہیں آ رہے تھے, اس کا ریزن کیا بن رہا تھا, ذات صدر, نہیں ذات صدر, ذات صدر کا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے اپنے سینوں میں کسی نے دولت کو چھپایا ہوا تھا, کسی نے اس کی محبت کو چھپایا ہوا تھا, کسی نے اس کی محبت, یعنی وہ فضا جس نے ان کے قلب کو گھیرا ہوا ہے وہ فضا کیا ہے, اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے سارا. شروعات تو ساری خدا کر دے گا, یعنی یہ جو کام ہے کہ باطل کو محو کر دینا, حق کو اپنے کلمات سے ثابت کر دینا, یہ خدا تھوڑی کہہ رہا ہے کہ آپ کیجئے. خدا کیا کہہ رہا ہے, ذات صدر صحیح کر لیجئے, اپنے سینے کو, اپنے سینے کی فضا کو طہارت دے لیجئے, وہاں سے ناپاکی کو ہٹا لیجئے. ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو سینوں میں ہے اس کو خود نہیں بنا رہا ہے, یعنی خدا اس کا عالم ہے اور اس کی بنا پر, یعنی کہ تم دھوکا نہیں دے سکتے. مثال کے طور پر کہ ایک شخص اپنے ظاہری عبادات کے ذریعے سے خدا کو یہ دھوکا نہیں دے سکتا کہ میں مومن ہوں, کیونکہ خدا فیصلہ کس بات پہ کر رہے ہیں, تمہارے ظاہری اعمال کو دیکھ کے نہیں کر رہا ہے, تمہاری ذات صدر کو دیکھ کے فیصلے کر رہا ہے. یعنی کہ یہ جو حق اور باطل والا فیصلہ ہے, اعمال پر بھی چیز آتی ہے, یعنی اعمال کی بنیاد پر بھی چیزیں آتی ہو جاتی ہیں, لیکن وہ الگ ہیں. لیکن جو حقیقی, جو آپ پہلے اسٹیپ کی بات کر رہے تھے کہ وہ پہلا اسٹیپ کہاں سے آئے گا, تو پہلا اسٹیپ یہاں سے آئے گا, ذات صدر سے آئے گا پہلا اسٹیپ. ٹھیک ہے,
وہ ہمیں ٹھیک کرنا ہے,
ظاہر ہے اپنے سینے کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے, یعنی یہاں کی فضا, یعنی مثال کے طور پر لوگوں کے لیے جس کے سینے میں کینہ ہے, بغض ہے, حسد ہے,
یا دنیا کی محبت ہے,
دنیا کی محبت ہے, سارے رجحانات, بھائی رجحان, رجحان کا لفظ یاد رکھیے گا, رجحان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جسے آپ بائی ڈیفالٹ ترجیح دیتے ہیں, پریفر کرتے ہیں, یہ آپ کا رجحان ہے. यानी जो अगर सामने आएगी ना, तो आप खुद ब खुद उस तरफ मैग्नेट की तरह आपको खींच लेगी अपनी तरफ। वो चीज इंसान के रुझान को रिप्रेजेंट करती है।
और अब यहां पे आना भाई,
एक आयत में आपको और सुना दूं ताकि आप फिर इस बात को भी, ये और क्लियर हो जाए ये बात आपको कि हमें क्या करना है, क्योंकि आप, मुझे लगता है ना कि इस पे थोड़ा ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा स्टेप्स लेने हैं।
नहीं नहीं यार, बहुत ज्यादा की बात नहीं, हमें ये, हम ये
सूरह यूनुस की आयत नंबर 100, ठीक है, सूरह यूनुस की आयत नंबर 100, यूनुस नंबर 10 है, 9900 दोनों ही पढ़ सकते हैं। वलव शाह रब्बो का, अगर तेरा रब चाहता। अब ये खिताब किससे हो रहा है? रसूल से हो रहा है, ठीक है, रसूल से। क्योंकि रसूल से क्यों हो रहा है? इसलिए कि रसूल बहुत ज्यादा अजियत महसूस कर रहे हैं लोगों की गुमराही से और उनके गलत कामों से। अगर तेरा रब की, तेरे रब की मशीयत होती, लआमना मन फिल अर्द कुल्लुहुम जमीआ, खुदा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि जितने भी लोग जमीन में सब के सब मोमिन हो जाते, ईमान ले आते, जो कि मसला थोड़ी है। अफअंता तुकरहु नास हत्ता यकूनु मुमिनीन, क्या पस तेरे लिए ये कराहियत है, यानी सॉरी तुकरहु नास, क्या तुम इंसानों पर जबर करोगे, दबाव डालते रहोगे इंसानों पर यहां तक कि वो मोमिनीन हो जाए। तो ये जबर का क्या मतलब है? रसूल क्या जबर डालेंगे, करेंगे, परसुएट करेंगे, बताते रहेंगे, बताते रहेंगे, बताते रहेंगे, और रसूल कौन सा नऊज़ु बिल्लाह दबाव डालेंगे कि तुम उन पर इतना दबाव डालते रहोगे इंसानों पर यहां तक कि वो सब के सब मोमिन हो जाएं। वमा काना लिनफ्सिन अंतुमिना इल्ला बिइज़्निल्लाह, एक नफ्स भी मोमिन नहीं हो सकता जब तक अल्लाह का इज़्न ना हो। आगे सुनिए, व यजअलु रिज्सा अलल लज़ीना ला याक़िलून, और जो लोग आकिल नहीं हैं उन पर अल्लाह निजासत को डाल देता है, अल्लाह निजासत को डाल देता है। जो इल्म है उस राह को तय करना,
और इल्म जो है वो
हकीकत का रोशन होना,
अल्लाह की।
तो अब आप बताएं, ये सारे के सारे काम खुदा को करने हैं, ये मेरे काम नहीं है। हक को साबित करना, बातिल को दूर कर देना, ईमान का बीज दिल में डाल देना, पौधा उगा देना, जैसे खुदा ने क्या कहा सूरह वाकया में, अअंतुम तज़रऊनहु अफरअईतुम मा तहरुसून, अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, क्या तुमने देखा है उसको जो तुम काश्तकारी करते हो, हर्फ करते हो, यानी जमीन बना के बीज बोते हो, अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, क्या उसकी ज़राअत तुम करते हो या हम करते हैं। तो हमारा काम कितना है? जमीन बोना, फजा साफ करना, बीज डालना, खत्म, ज़राअत उसका काम है। बात वाजे हो रही है कि हमें क्या करना है? तो ये वाले काम, ये प्रॉब्लम नहीं है कि हक का हक खुलना, हक को साबित होना, हक का जज्ब हो जाना, ये सब वो कर देगा। तो इस किस्म की आयतें सूरह अनाम में भी है कि यजअलुल्लाहु रिज्सा अलल लज़ीना ला युमिनून, जो लोग ईमान नहीं लाते उन पर अल्लाह निजासत को डाल देता है। ठीक है, एक आयत और आपको सुना दूं, टाइम हमारा काफी हो गया।
निजासत से मीनिंग के दिलों पे मोहर
लगाने, निजासत से मतलब ये गंदगी, कुफ, शिर्क, निफाक, ये खुदा, यानी और निजासत का सबसे बड़ा मतलब ये है कि अल्लाह शैतान को इजाजत देता है कि तुम इसके वली बन जाओ, असल निजासत ये। क्योंकि ये जितने भी इस किस्म के अफराद हैं वो सब के सब उनका वली ताहूत और शैतान है। تو یعنی اللہ کی طرف سے وہ جو ایک حفاظتی شیلڈ ہے وہ ہٹ جاتی ہے، اور پھر پرمیشن ہوتی ہے سارے شیاطین کو کہ جاؤ اسے اپنی ولایت میں لے جاؤ. یہ ہے وہ نجاست جو اللہ ڈال دیتا ہے. اور آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پر بات اسلام اور ایمان کی نہیں ہو رہی ہے جیسے اس آیت میں ایمان، لیکن یہاں یاقلون ہے، لا یاقلون ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی بڑی ریکوائرمنٹ ہے خدا کی نظر میں کہ انسان کیا ہو، عاقل ہو. ایک آیت میں آپ کو اور سنا دوں، وہ بھی آپ کو وہی سنت الہیہ، یہ بھی خطاب جو ہے نا یہ رسول سے ہی ہو رہا ہے. یہ آیت نمبر 54 ہے سورہ انعام کی. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب تیرے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یا آیتوں کے وسیلے سے ایمان ڈیولپ کرتے ہیں. جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ اصل کیا ہے، روٹ وہ نہیں ہے، میں وہی بات سمجھانے جا رہا تھا کہ روٹ وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو، یہ روٹ نہیں ہے اس جگہ تک آنے کا، اس کا روڈ میپ ہی ڈیفرنٹ ہے. تو یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یؤمنون بآیاتنا، ایمان رکھتے ہیں، یا آپ کہیں کہ ظاہراً ترجمہ ہماری آیات پر، یا با کے جتنے بھی وہ ہیں موارد ہیں تو اس میں سببیت آتا ہے، مصاحبت آتا ہے، ملابست آتا ہے، یعنی کہ یہ آیتوں کے ان کا ایمان کیسے ڈیولپ ہوا ہے، ہماری آیتوں کے ذریعے سے ڈیولپ ہوا ہے. وہ لوگ جب تمہارے پاس آئیں، فقل، پس ان سے کہو سلام علیکم. اب یہ سلام علیکم کس کا سلام ہے؟ کس کا سلام ہے؟ اللہ کا سلام ہے بزبان پیغمبر. اللہ کا سلام ہے بزبان پیغمبر. تو اگر آپ اس روٹ سے اپنے ایمان کو ڈیولپ کرتے ہیں، کس روٹ سے؟ آیات الہیہ کے روٹ سے، تو کیا یہ خالی رسول کے دور میں یہ کلام ختم ہو گیا؟ یہ جو سلام علیکم ہے یہ ہر اس انسان پر ہے، اور یہ خدا کا سلام ہے. کن لوگوں پر سلام ہے؟ یعنی جو آیات الہیہ کی راہ سے اپنے ایمان کو بلڈ کرتے ہیں، آیات الہیہ کی تصدیق کرتے ہیں اپنے ایمان کے ذریعے سے، ان پر سلام ہے. اور کیا کہہ دو سلام کے بعد؟ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے. اب یہ تمہارے رب کا ورڈ خود ایک اظہار محبت ہے. تمہارے رب نے لکھ لیا ہے اپنے نفس پر رحمت کو. یعنی اللہ نے اپنے نفس پر، تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھ لیا. یعنی میں تم سے جب بھی معاملہ کروں گا تو کیا معاملہ کروں گا؟ رحمت کی راہ سے معاملہ کروں گا. انہ من عمل منکم سوء بجہالتن، تم میں سے کوئی بھی اگر جہالت کی بنا پر کوئی برا عمل کر بیٹھے، ثم تاب من بعده واصلح، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے، فانه غفور الرحیم. یہ راہ اور ہے، بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ رستہ اور ہے، یہ وہ رستہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں میں یہ اس پہ یہ کرو یہ نہیں کرو، فقی مسائل پہ عمل کر لو، یہ وہ رستہ نہیں ہے. اگرچہ کہ اس میں شریعت کی پابندی، تمام چیزوں کی پابندی، اور جو ایک جو بہت اہم بات ہوتی ہے وہ یہ کہ جو انسان ہائر لیول کا ہوتا ہے نا، وہ نچلے لیول کی چیزوں کو نیچے والے درجے سے زیادہ اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے. یعنی اگر کوئی انسان صاحب معرفت ہے تو صاحب معرفت انسان شریعت کا فقط فقہی اس پر عمل کرنے سے زیادہ उसका उसकी पाबंदी करेगा और उस राह पे चलेगा। बात वाजे हो रही है आप लोगों को? सूरह अनआम 54। देखिए सलाम जो है इसमें खुदा है, इसमें खुदा ही या सलाम, और इसमें फ़िएली है, यानी इसमें फ़िएली का क्या मतलब है कि ये एक ऐसा इस्म है कि जिसके जरिए से खुदा के काम का पता चलता है। और वो काम क्या है? सलामती का भेजना। यानी जब आप कहते हैं सलाम या सलामो, खुदा को या सलाम कह के आप बुलाते हैं, या खुदा कह रहा है सलामुन अलैकुम, यानी इसका क्या मतलब है? ये मेरे आपकी तरह का सलामुन अलैकुम नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से मुसलसल सलामती नाजिल हो रही है। इस सलाम अलैकुम का जो खुदा ने कहा है,
तो हम लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो
हम तो विश है ना, ये तो दुआ है कि आपके लिए सलामती हो, लेकिन जब खुदा कह रहा है सलामुन अलैकुम तो उसका क्या मतलब है कि तुम पर अल्लाह की तरफ से सलामती नाजिल हो रही है। जिसको भी खुदा कहेगा सलामुन अलैका या अलैकुम, उसका यह मतलब है। तो ये सलाम जो है किसका कौल है? कौल का मतलब कौल, ये कौल नहीं, कौल का मतलब एक हकीकत जो सादिर हो रही है। किसकी तरफ से सादिर हो रही है? जो रब जो रहीम है, मिर रब्बिर रहीम। इस आयत में भी है ना, कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, कि जिसको खुदा ने कहा सलामुन अलैकुम तो उसके लिए क्या है? उसके लिए खुदा ने अपने नफ्स पर रहमत को लिख लिया। यानी कि मैं तुमसे जब भी मामला करूंगा रहमत के रास्ते करूंगा, चाहे वो चीज़ तुम्हारी जिंदगी में सख्ती हो या आसानी हो जाहिरन, लेकिन मामला हमेशा कौन सा होगा? रहमत वाला होगा। ये राह और है, ठीक है, ये वो वाला रास्ता नहीं है। तो ये राह किस उससे तय होती है? ये वही इल्म और अकल और बंदगी के रास्ते पे तय होती है, ठीक है। और इसमें जो मोमिन है उसकी सबसे बड़ी अवेयरनेस किस चीज के हवाले से होती है? आयात इलाहिया के हवाले से होती है। और आयात इलाहिया कहां पर है? जिंदगी के हर कदम पर है। यानी आप जिस तरफ अपनी नजर को घुमाएंगे आपको कोई ना कोई आयत इलाही नजर आएगी, और उन आयात के जरिए से जो आपका ईमान बिल्ड होगा वो हकीकी ईमान है, जो आपको आलिम बनाएगा, यानी जिंदगी की हकीकतें आपके सामने रोशन कर देगा, ठीक। और अगर आप उसके रास्ते पर चलेंगे, उस इल्म की राह पर चलेंगे, तो आप आकिल हो जाएंगे, और वो सब चीजें फिर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। लेकिन लेकिन कि ये वाले जो हक है ये इंसान पर, जो वही जो आपकी बात बार बार आ रही थी ना शुरू वाली, तो मैं फिर उसी पे आ जाऊं एंड में। शुरू कहां से होगा? ज़ात सदर से, ठीक है। शुरू कहां से होगा? ज़ात सदर से, कि अगर सीने की फजा नापाक है तो इंसान कभी भी हक को बातिल से, यानी खुदा उसके लिए कभी भी हक और बातिल को अलग अलग करेगा ही नहीं। आई बात वाज़े कि ये वाला काम मैं और आप, मुझे मैं आप नहीं कर सकते, ये कौन करेगा? यमहुल्लाहुल बातिल व युहिक्कुल हक्क बिकलिमाते, ये खुदा करेगा काम, लेकिन किसके लिए करेगा? कब करेगा? जब सीने की फजा को पाक देखेगा। वरना खुदा क्या करेगा? नौज़ुबिल्लाह यजअलुर रिज्स, और जो बहुत खतरनाक जुमले हैं सूरह तौबा में दो जगह पर आए, एक जुमला आया है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, اور ایک جگہ آیا ہے منافقین کے بارے میں کہ انہ رجسن، یہ منافقین خود ایک نجاست ہیں. تو بات آپ کے پاس ہو رہی کہ یہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں خدا کا سلوک کیا ہے. تو بیسیکلی ہمارے پوری ایمفیسس اسی چیز پہ جا رہی ہے نا، یعنی کہ جتنا بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارا ایمفیسس کیا ہے، اپنی ذات کی طہارت، اس میں سے یہ سب نکالو باہر، کہ جو ہمارے یعنی کہ رجحانات ذات صدر ہیں، اور جو بھی اندر جذب ہوتا ہے ان فیکٹ جو ہماری کوالٹیز ہیں وہ ہمارا قلب ہے، اس کو یوں سمجھ لیں. جی جی
تو نجاست خدا سے نجاست کیسے ہو سکتی؟
دیکھیں اس میں اب یہ جو میں اس کا جواب آپ کو ایک دے سکتا ہوں، لیکن وہ میرا جواب ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ اس ٹاپک پر، اس موضوع پر کافی غور کرتے کرتے ایک چیز روشن ہوئی تھی دماغ پہ، اور مجھے نہیں پتا کہ وہ بات زیادہ تر سمجھ میں آ بھی پائے یا نہیں آ پائے، کہ یہ جو دنیا ہے نا، عالم مادیت ہے، یہ رجس والا معاملہ صرف یہاں پر ہی ہے اور کہیں بھی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے نا، کئی چیزوں کی وجہ سے جو پسترین مقام ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ صرف یہ تمام کائنات اور زندگی میں صرف یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر خدا کی نافرمانی پاسبل ہے، ورنہ خدا کی نافرمانی کہیں پاسبل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سمپلی یعنی جیسے وہ یہ نا کہ خدا کیا ہے، زندگی ہے، خدا حقیقت ہے، کہیں بھی زندگی کے رول کو کوئی بریک کر سکتا ہے، کہیں بھی حقیقت کو کوئی ڈینائی یا ڈیفائی کر سکتا ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پر پاسبل ہے کیونکہ اس کو اس طریقے سے بنایا گیا. تو بیسیکلی جو بات سمجھ میں ایک آئی وہ یہ ہے کہ جو خلقت ہے نا، وہ خلقت اسماء الہیہ سے، وہی جو آپ بات کہہ رہے ہیں، اس دنیا کی خلقت کے عناصر سب نہیں، یعنی وہ جو حیات ہے دنیا کی خلقت ہے، نہ کہ آسمان و زمین کی خلقت. حیات دنیا کی خلقت جو ہے وہ اسماء سلبیہ سے، نہ کہ ثبوتیہ سے. اس لیے اس دنیا کی زندگی کو چھوڑنے میں عافیت ہے، نہ کہ پکڑنے میں. سلبیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو نہیں ہے، جس کو جو ریجیکٹڈ ہے، ریجیکٹڈ ہے نا. یعنی سلبی صفات کون سی ہیں جو خدا کی ذات سے ریجیکٹڈ ہے؟ ہاں، یعنی جو خدا سے ریجیکٹڈ ہے. تو یہ ایک کہ اسی لیے یعنی کہ اس دنیا میں، اور عقل کے لغوی معنی کیا ہیں، لٹرل میننگ کیا ہے عقل کے؟ عقل جو ہے یا معقل جو ہے نا، اس پٹے کو کہتے ہیں جو عرب اونٹ کے پیر میں باندھتے تھے کہ وہ بھاگ نہ جائے گئیں. عقل جو ہے وہ مطلب ہوتا ہے ایک ایسی چیز جو انسان کو روک کے ود ان لمٹس رکھے، لٹرل میننگ. اور اسی لیے قرآن کریم میں ہے کہ ان فی ذلک لآیات لأولی النہا. نہا کے ظاہری معنی یہ ہے کہ نہیں کرنے والی، روکنے والی، منع کرنے والی چیز، لیکن اس کا ترجمہ آپ ہر جگہ دیکھیں گے وہ لوگ جو عقل والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عقل ہے جو انسان کو روک رہی ہوتی ہے، غلط کاموں سے روک رہی ہوتی. تو اس دنیا کی زندگی کی خاص بات کیا ہے کہ یہ ان اسماء و صفات سے بنی ہے کہ جو حقیقتاً ریجیکٹڈ ہیں، اور جو اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مطرود و مردود ہو جائے گا. इसको तर्क करने में, इससे जान छुड़ाने में, इससे फरार करने में निजात है, ना कि इसको पकड़ने में। और आखिरत और मलकूत किससे बनी है? सिफाते सुबूतिया से, जो साबित हैं, जो स्टैब्लिश्ड हैं। तो उसको आप जितना ग्रैब करेंगे वो आपके लिए सलामती है, आफियत है, बरकत है, रहमत है, दवा है, पायदारी है। नहीं, ये चीज़ अगर आप गौर करें, इसको हमने काफ़ी दिक्कत से बयान किया था कि हयात दुनिया एक बिल्कुल अलग चीज़ है, उसमें रिच्स है। खिलकत समावात अर्ज़ में कोई रिच्स नहीं है। ये जो हयात दुनिया है ना, जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें है ये सारी गंध और शयातीन और ये और वो सारी मुसीबतें। जो तखलीक है खुदा की, उसमें नहीं है। मैंने वहां पे सारी चीजें रिलेटिव है एक दूसरे से।
तो ये तखलीक है खुदा की।
यानी जैसे मैं मिसाल दूं आपको,